हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। विराज ने मनस्वी की बात पूरी सुने बिना ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। इस वजह से मनस्वी को बहुत गुस्सा आया और उसने दोबारा उसका नंबर डायल किया, लेकिन इस बार कॉल ही नहीं लगी। इस पर मनस्वी समझ गई कि विराज ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया होगा। उसे ये भी नहीं पता था कि विराज फिलहाल कहाँ मिलेगा, इसलिए वो परेशान होकर दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर बैठी हुई थी। तभी अनय कमरे में आया और एकदम से बोला, आपस में आने से भला क्या होगा, जो होना था वो हो गया। तुम पहले ही शुरुआत से ये सब रोक सकती थीं, लेकिन तब तो तुमने विराज को सपोर्ट किया और देखो अब। अनय की ऐसी ताने भरी बातें सुनकर मनस्वी समझ गई कि उसने विराज के साथ हुई फ़ोन कॉल पर बात सुन ली होगी, और वैसे भी मनस्वी खुद भी अब उससे ये सब कुछ छिपाना नहीं चाहती थी, लेकिन साथ ही वो ये भी नहीं चाहती थी कि अनय उसे गलत समझे और इसका जिम्मेदार समझे। इसलिए उसने तुरंत ही रिक्वेस्ट करने वाली आवाज़ में कहा, अनय प्लीज़ ट्रस्ट मी, इन सब में मेरा कोई हाथ नहीं है और विराज ने मुझे कुछ भी नहीं बताया था। मैं उसे काफ़ी दिनों से ये सब करने से रोक रही हूँ, लेकिन वो पागल हो गया है उस लड़की के पीछे, वो जो तुम्हारे दोस्त की वाइफ है और अभी सिंघानिया इंडस्ट्रीज़ के ओनर भी है। अपनी सफाई में इतना कुछ बोलते हुए मनस्वी एकदम उसके सामने आकर खड़ी हो गई और उसने अनय का हाथ अपने हाथ में कस कर पकड़ लिया। अनय ने उसी तरह शक भरी निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, अच्छा तो तुम्हें ये सब कुछ पता है, फिर भी तुम कुछ नहीं कर पाईं। द ग्रेट मनस्वी राठौर भी खुद को हेल्पलेस फील कर रही है। वाओ, मुझे तो लगा था मेरे जैसे लोग ही सिर्फ ऐसा फील करते हैं। मनस्वी जल्दी जल्दी अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोली, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता और मैं सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में ही सब कुछ पता रखती हूँ, जो कुछ भी मेरे लिए ज़रूरी है, बाकी नहीं। हाँ, मैं पहले आदित्य और उसकी कंपनी की ग्रोथ और सक्सेस से जलती थी, साथ ही तुम उसे इतना एकतरफा दोस्त मानते थे इसलिए भी, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया कि वो सच में अपने काम के लिए काफ़ी मेहनत करता है और वो पहली पोजिशन पर होना चाहता भी है। इसके अलावा मैं तुम्हारी दोनों की फ्रेंडशिप भी समझ गई हूँ, लेकिन तुम, मुझे पता है तुम मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगी, फिर भी पता नहीं क्यों मैं तुम्हें ही सब बता रही हूँ। इतना बोलते हुए मनस्वी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, क्योंकि उसकी आंखों में आंसू थे। वो पता नहीं क्यों अनय से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लगाकर बैठी थी और उसे लगता था ऐसे वक्त में अनय उसका साथ देगा और उसकी बातों पर यकीन करेगा, जबकि मनस्वी ने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया था। उसने अपनी लाइफ में किसी भी डिसीजन में, किसी भी खुशी या गम में, अच्छे या बुरे वक्त में उसे शामिल नहीं किया था। अनय ने उसकी बातें सुनकर काफ़ी कुछ सोचा और उसे समझ आ रहा था कि मनस्वी सब कुछ सच बोल रही है, क्योंकि इतने टाइम से वो भी सब कुछ पता कर रहा था तो इस बारे में उसे भी भनक थी, इसलिए वो उसे रोता हुआ नहीं देख पाया और उसके पीछे जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तुम मुझे ये सब इसलिए बता रही हो क्योंकि ये ज़रूरी है, कम से कम मुझे तो पता होना चाहिए जिससे अगर बाद में कोई भी बात मेरी वाइफ पर आए तो मैं उसका डिफेंड कर पाऊँ। और रही बात आदित्य की, तो उसे कुछ भी नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है, इसलिए तुम किसी भी तरह का गिल्ट मत लो। मनस्वी ने उसकी बातें सुनकर पीछे मुड़ते हुए उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या तुम्हारा दोस्त सच में ठीक है? लेकिन उसका तो इतना बुरा एक्सीडेंट, मेरा मतलब है उसकी कार, क्या वो उस कार में नहीं था? थैंक गॉड, अच्छी बात है, मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैं नहीं चाहती कि उसे या किसी को भी कुछ हो विराज के पागलपन की वजह से, और विराज को तो मैं अब अपने तरीके से समझाऊंगी। अनय ने एकदम सीरियस होकर उसकी बात का जवाब दिया, हाँ, भगवान की दया कह लो या फिर आदित्य की अच्छी किस्मत कह लो, उस दिन वो उस कार से अपने होटल से निकला ही नहीं था। उस कार में सिर्फ उसका ड्राइवर था और वो बाद में अपने असिस्टेंट के साथ वहाँ से कहीं और चला गया था। इस बार मनस्वी ने उसका हाथ पकड़ते हुए बहुत ही उम्मीद भरी नज़रों से उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, और तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? तुम मुझ पर विश्वास करते हो ना अनय? अनय ना चाहते हुए भी हल्का सा मुस्कुराकर बोला, अब क्या करूं, करना पड़ता है और कोई वाइफ नहीं है ना मेरी और ना ही कोई चॉइस। मनस्वी उसकी बात पर कंफ्यूज होते हुए बोली, अच्छा तो चॉइस चाहिए क्या तुम्हें? एक मिनट, तुमने तो कहा था कि तुम किसी और से प्यार करते हो, तो फिर कैसे ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास? और अनय ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी जैसी हिटलर बीवी के रहते किसी और की तरफ देखने की हिम्मत कर सकता हूँ क्या अनय, या फिर कोई और? जान प्यारी है मुझे अपनी, लेकिन तुमने उस दिन काफी समझदारी भरा बर्ताव किया, उतनी तो मुझे उम्मीद भी नहीं थी तुमसे। मनस्वी उसकी बातों का मतलब समझते हुए पूछती है, अच्छा तो फिर किस बात की उम्मीद थी? अनय भी थोड़ा सोचते हुए बोला, नहीं ज्यादा उम्मीदें तो मैं तुमसे नहीं रखता, लेकिन फिर भी ये नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी गिव अप कर दोगी यार। इतना हैंडसम और समझदार हस्बैंड है तुम्हारा, कम से कम थोड़ा फाइट करना तो बनता ही है ना मेरे लिए, लेकिन तुम तो। मनस्वी ने हल्के से उसके कंधे पर मारा और अभी भी वो उसके गले लगी रही। तभी अनय ने कहा, विराज का सच में कुछ करना पड़ेगा और तुम अब उससे अकेले मिलने भी मत जाना, हमें मिलकर उसका कुछ परमानेंट सोल्यूशन करना होगा, लेकिन उससे पहले हम पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। मनस्वी हाँ में अपना सिर हिलाते हुए बोली, हाँ ठीक है, तुम जो भी करोगे मैं उसमें तुम्हारा साथ दूंगी, क्योंकि मैं अब विराज और उसकी गलत हरकतों को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देने वाली, और इसके अलावा उस लड़की को भी सावधान कर दो, मुझे लगता है वो अब उसके पीछे ही जाएगा ये सोचकर कि आदित्य मर गया है या फिर बुरी तरह से जख्मी होगा। मनस्वी की सलाह सुनकर अनय ने भी काफी सीरियस होकर कुछ सोचा। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसके मन में इस बात को लेकर पहले से ही कोई प्लान चल रहा है, लेकिन फिलहाल उसने मनस्वी से कुछ भी नहीं बताया और मनस्वी भी कुछ और जानने की जल्दी में नहीं थी और वो तसल्ली से मुस्कुराते हुए उसके गले लग गई। फिलहाल अनय उसके साथ है और उस पर भरोसा करता है, इतना ही मनस्वी के लिए बहुत है, और फिलहाल वो अपने पति की बाहों में उसके साथ और विश्वास को महसूस कर पा रही है। अनय का ध्यान कहीं और था, इसलिए उसने भी मनस्वी को खुद से दूर नहीं किया और कुछ देर तक वो दोनों उसी तरह खड़े रहे। अनय का हाथ उसकी कमर और पीठ पर था और एहसास की वजह से मनस्वी के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी जिसे फिलहाल अनय ने नोटिस भी नहीं किया। दूसरी तरफ पुराना पुश्तैनी बंगला, ये वही घर है जहाँ पर आदित्य और सुनैना की शादी हुई थी और सुनैना कॉल पर बात करने के बाद ड्राइवर के साथ यहाँ पर आई थी, लेकिन उसने कार उस बंगले से कुछ दूर पहले ही रुकवा दी थी और वहाँ से ड्राइवर को वापस भेज दिया था। ड्राइवर भी उसकी बात मानकर वहाँ से चला गया और फिर सुनैना ने एक स्कार्फ से अपना चेहरा ढका और एकदम छुपकर उस घर की तरफ आई और उसने देखा कि वहाँ पर वॉचमैन भी नहीं है, इसलिए वो सीधा घर के अंदर आ गई। घर का दरवाजा लॉक नहीं था क्योंकि भवानी काका वहाँ पर ही थे। सुनैना अंदर आई और उसने उनकी तरफ देखा लेकिन कुछ भी नहीं बोली और भवानी काका ने भी सिर्फ उसे आंखों से इशारा किया और सुनैना चुपचाप उसी तरफ बढ़ गई। वो सीढ़ियों के पीछे बने हुए कमरे की तरफ गई क्योंकि भवानी काका ने उसे उस तरफ जाने का ही इशारा किया था, और वो एक ऐसा कमरा था जहाँ पर सुनैना आज तक कभी भी नहीं गई थी। यहाँ तक कि उसे तो उस कमरे के बारे में पता भी नहीं था कि सीढ़ियों के पीछे भी एक कमरा है। पास पहुँची, उसने देखा कि कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं है और उसके धक्का देते ही वो दरवाज़ा खुल गया। सुनैना अंदर आई और उसने कहा, आदित्य, आदि, कहाँ हो तुम और इस रूम में इतनी कम लाइट्स क्यों हैं? सुनैना ने आवाज़ लगाई लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था और कमरे में इतनी रोशनी भी नहीं थी, इसलिए सुनैना को अब थोड़ी सी घबराहट हो रही थी। घबराहट की वजह से सुनैना अपने माथे का पसीना पोंछते हुई बोली, आदित्य देखो ये कोई मजाक करने का वक्त नहीं है, एक तो पहले ही मैं कार एक्सीडेंट की खबर सुनकर इतनी परेशान हूँ और उसके बाद तुम इस तरह से। इसके बाद भी सुनैना को कोई जवाब नहीं मिला। वो आगे बढ़ी लेकिन तभी एकदम से उसका मोबाइल फोन रिंग हुआ और वो घबरा गई, लेकिन उसने देखा तो मोबाइल पर एक टेक्स्ट मैसेज आया हुआ था और उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए थे। सुनैना को समझ नहीं आया कि उसे उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए या नहीं क्योंकि वो एक अननोन नंबर था, लेकिन फिर भी उसे इस वक्त वही करना ठीक लगा, इसलिए वो आगे बढ़ी और उसने सामने लगे हुए मिरर के पास देखा तो वहां पर एक ब्लैक कलर का स्विच बोर्ड था जिस पर सिर्फ एक स्विच था। सुनैना ने वो स्विच देखा और फिर आंखें बंद करके भगवान का नाम लेते हुए उस स्विच को प्रेस कर दिया और उससे एक अजीब चीज हुई। वो मिरर सामने की दीवार से साइड हो गया, बिल्कुल इस तरह जैसे कि वो मिरर नहीं बल्कि दरवाज़ा हो, और वो खुलते ही सुनैना को एक और सीक्रेट रूम नज़र आया जो कि उस रूम से लगभग दो गुना बड़ा था और वहाँ की सारी दीवारें वाइट कलर की थीं। उस रूम में रोशनी की काफी ज्यादा थी, लेकिन सामान बिल्कुल ना के बराबर था। उस दीवार के खुलते ही सुनैना चीख कर अपनी जगह से पीछे हट गई, क्योंकि वो उस आईने के एकदम करीब खड़ी थी। लेकिन फिर उसने झांक कर ये सब कुछ देखा और नोटिस किया। इसके साथ उसे वहां पर दो या तीन लोगों की परछाई भी नजर आ रही थी और एकदम धीमी आवाज में किसी के बात करने की आवाज भी, लेकिन वो ठीक तरह से समझ नहीं पाई कि ये कौन है। अंदर आ जाओ सोना, डरो मत, मैं यहाँ पर ही हूँ। उसी खुफिया कमरे के अंदर से आती हुई आदित्य की आवाज सुनकर सुनैना ने मन ही मन राहत की सांस ली और फिर एकदम ही वहां से अंदर आ गई। उसके आते ही वो शीशा वापस अपनी जगह पर आ गया, लेकिन जिस तरह वो गई थी उस तरह वो शीशा नहीं बल्कि वाइट कलर की दीवार थी। क्रमशः